بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم میں سے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों आज गुरुवार है, खुर्दाद माह की 5, मई की 26 और शव्वाल की 24 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि देश के विकास को प्रतिबंधों के हटाए जाने से जुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसराइल ने कर्नल सैयद खुदाई की हत्या में लिप्त होने की बात स्वीकार कर ली है। सैयद नसरुल्ला का कहना है कि इसराइल के विरुद्ध 2000 की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष का बजट जारी कर दिया है। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी सरकार देश की प्रगति को अमेरिका के एकपक्षीय प्रतिबंधों को हटाए जाने से नहीं जोड़ेगी। बुधवार को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि वियना में परमाणु वार्ता से अलग प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम दुश्मनों की धमकियों को एक बाधा नहीं मानते, उसी तरह हम प्रतिबंधों को हटाए जाने तक देश की प्रगति को रोक कर नहीं रखना चाहते। तेहरान ने हमेशा ही अमेरिका के गैर कानूनी प्रतिबंधों की निंदा की है और इस कदम को आर्थिक युद्ध और आर्थिक आतंकवाद करार दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसने प्रगति का रास्ता भी खोज लिया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी राजदूत ने संस्था के प्रमुख के नाम पत्र में पवित्र रोजे के रक्षक कर्नल हसन सैयद खुदाई की हत्या की कड़ी आलोचना की है। तेहरान में रविवार को क्रांति विरोधी और विश्व साम्राज्यवादियों से जुड़े तत्वों ने पवित्र रोजों के रक्षक कर्नल हसन सैयद खुदाई को आतंकी हमले का निशाना बनाकर शहीद कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी राजदूत मजीद तख्त रवांची ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम में पत्र में कहा कि यह पत्र 22 मई 2022 को आतंकवादी गुट दाइश के विरुद्ध संघर्षरत ईरान की सशस्त्र सेना के एक सैनिक शहीद सैयद खुदाई की कायराना हत्या के संबंध में लिखा गया है। इस पत्र में आया है कि वर्तमान सबूत और साक्ष्यों से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आतंकी कार्रवाई उन सरकारों की ओर से अंजाम दी गई है जिनकी विदेश नीति में अपने वैध लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों और बेगुनाह नागरिकों के विरुद्ध व्यवस्थित आतंकवाद का क्रम एक असली हथकंडे के रूप में शामिल है।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का कहना है कि IRGC के कर्नल शहीद सैयद खुदाई की हत्या के पीछे उसका हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकार सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हालांकि ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने इस हत्या के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसराइल के एक खुफिया अधिकारी का कहना है कि ज़ायोनी शासन ने वॉशिंगटन को यह जानकारी दी है कि IRGC के कर्नल की हत्या के पीछे उसका हाथ है। इस संदर्भ में IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने चेतावनी दी है कि शहीद खुदाई के खून का बदला लिया जाएगा।
ईरान के विरुद्ध अमेरिका की दुश्मनी और शत्रुतापूर्ण नीतियों का क्रम यथावत जारी है। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने दावा किया कि उसने तेल की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पता लगाया है जो IRGC की गुड्स ब्रिगेड द्वारा चलाया जाता है और उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान के विरुद्ध बाइडेन प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने का क्रम ऐसी स्थिति में जारी है कि ईरान के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा दबाव के ट्रंप प्रशासन की नीति पर इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने आलोचना की थी। इरना की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने IRGC की गुड्स ब्रिगेड के नेतृत्व में तेल की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि इस नेटवर्क ने गुड्स ब्रिगेड और लेबनान के हिजबुल्ला संगठन को लाखों डॉलर के ईरानी तेल की बिक्री से संसाधन उपलब्ध कराए और उसने ईरान के तेल के संसाधनों की बिक्री में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम किया है। बहुत से टीकाकारों का ख्याल है कि ये ऐसे समय में कि जब परमाणु समझौते की बहाली के लिए वियना वार्ता का क्रम जारी है तो ईरान के विरुद्ध अमेरिका के नए प्रतिबंध एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है जो वियना वार्ता की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। फेसबुक ने ईरान विरोधी अपनी नीति को जारी रखते हुए IRIB की वर्ल्ड सर्विस के बांग्ला रेडियो के पेज को बंद कर दिया है। रेडियो बंगला के इस पेज पर 58,000 फॉलोअर थे जिसे 24 मई 2022 को बिना किसी नोटिस या चेतावनी के बंद कर दिया गया। इसके साथ ही फेसबुक ने के ईरान और बांग्लादेश में मौजूद सभी एडमिन्स की आईडी भी ब्लॉक कर दी गई है।
हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा है कि हिजबुल्ला ने सन 2000 में इसराइल के खिलाफ जो सफलता हासिल की थी वो समकालीन लेबनानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि 25 मई 2000 को लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन ने इसराइल को दक्षिण लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए 25 मई को लेबनान में प्रतिरोध की ईद के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बुधवार की रात टीवी पर अपने संबोधनों में हसन नसरुल्ला ने कहा, 2000 की जीत ने उस सेना के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया जिसे अजय समझा जाता था। इसी के साथ ग्रेटर इसराइल की योजना पर पानी फेर दिया गया और फिलिस्तीनी लोगों में आजादी की उम्मीद जगा दी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से यमन के युद्ध में युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के अवसर पर सेना का कहना है कि 6 सैनिक बंदियों का आदान प्रदान हुआ है। कैदियों का आदान प्रदान यमनी गुट के बीच वार्ता का एक ऐसा बुनियादी विषय है जिसके संबंध में अंजाम पाने वाले प्रयास अक्सर नाकाम रहे हैं और केवल कुछ अवसरों पर ही ये कामयाब रहे जब स्थानीय लोगों की मध्यस्थता के परिणाम में कुछ कैदियों की रिहाई अंजाम पा सकी है। अलमसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यमन की राष्ट्रीय सॉल्वेशन सरकार में कैदियों के मामले की राष्ट्रीय कमेटी के प्रमुख अब्दुल कादिर मुर्तजा ने ऐलान किया है कि यमन के 6 कैदियों को शबवा प्रांत में रिहा कर दिया गया।
तुर्क सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के बहाने इराक और सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों पर बमबारी की है। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय सूत्रों का कहना है कि खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के ठिकानों पर तुर्क सेना की बमबारी और हवाई हमला वास्तव में उत्तरी सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई की एक भूमिका है। सूत्रों का कहना है कि तुर्की के युद्धक विमानों ने उत्तर इराक पर भी बमबारी की है। ये बमबारी ऐसे समय में हुई कि जब इसराइली युद्ध मंत्री याहिर लापेद और उनके तुर्क समकक्ष मौलूद चौशोकलो ने बुधवार को तेल अवीव में मुलाकात की थी। पिछले 15 साल के दौरान ये किसी भी तुर्क विदेश मंत्री का पहला इसराइल दौरा था।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कतर की प्रतिनिधि ने इसराइली सैनिकों द्वारा शहीद की गई अल जजीरा टीवी की फिलिस्तीनी रिपोर्टर शिरीन अबू कले की हत्या की तुरंत जांच कराने और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञात रहे कि 11 मई को शिरीन को उस वक्त इसराइली सैनिकों ने गोली मार दी जब वे जेनिन के एक शरणार्थी कैंप पर इसराइली सेना के छापे की रिपोर्टिंग कर रही थी।
दाइश ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में बम हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बल्क प्रांत की पुलिस के प्रवक्ता आसिफ वजीरी का कहना है कि बुधवार की शाम इस प्रांत की राजधानी मजार शरीफ में 3 बम धमाकों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए। बुधवार को ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। हालांकि काबुल के मस्जिद में हुए बम हमले की किसी ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। पिछले महीने भी मजार शरीफ में 2 मिनी बसों को निशाना बनाया गया था जिसके नतीजे में 10 लोग हताहत और घायल हो गए थे। गौरतलब है कि मजार शरीफ हजारा शिया बहुल इलाका है जहां आतंकवादी गुट दाइश निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमले कर रहा है। इस इलाके में होने वाले अक्सर आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने ली है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने बजट विधानसभा में पेश किया। बजट पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे किसानों, गरीबों और बेरोजगार लोगों के हित में करार दिया, जबकि विपक्षी दलों ने इसको कहा, इसके बारे में इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकार सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जानवी शासन के एक गुप्तचर अधिकारी ने अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किया है कि सैयद खुदाई की शहादत इसी शासन का काम है। अवैध जानवी शासन को आतंकवाद की शरण स्थली भी कहा जा सकता है। आतंकवाद इस शासन का आधार है जो इसके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुपकार अलायंस ने कहा है कि इससे कश्मीर की स्थिति में सुधार नहीं आएगा और दिल्ली सरकार अगर कश्मीर में शांति स्थापित करना चाहती है तो उसे अपनी सख्त नीति में परिवर्तन करना होगा।
आज सुबह जब पूरे कश्मीर में बहुत सारी जगह पर मल्टीपल जगह पर धाका लगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व में गठबंधन की नई सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बुधवार को इमरान खान संसद भंग करके देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस बीच पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकार सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जानवी शासन के एक गुप्तचर अधिकारी ने अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किया है कि सैयद खुदाई की शहादत इसी शासन का काम है। अवैध जानवी शासन को आतंकवाद की शरण स्थली भी कहा जा सकता है। आतंकवाद इस शासन का आधार है जो इसके भीतर कूट कूट कर بھرا ہوا ہے. سمیکھا پیش کریں ساتھی قائم رضوی.
نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ زائونی شاسن نے امریکہ کو بتایا ہے کہ سیاد خدائی کی ہتیا اسی شاسن کا کام ہے. سماچار پتر نیو یارک ٹائمز نے جانکار سوتروں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زائونی شاسن کے ایک گپتچر ادھیکاری نے امریکی ادھیکاریوں کو سوچت کیا ہے کہ سیاد خدائی کی شہادت اسی شاسن کا کام ہے. اویدھ زائونی شاسن کو آتنکوادیوں کی شرن استھلی بھی کہا جا سکتا ہے. آتنکواد اس شاسن کا آدھار ہے جو اس کے بھیتر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. زائونی شاسن نے بہت سے فلسطینی اور لبنانی نیتاؤں کی ہتیائیں کی ہیں. ابھی حال ہی میں زائونی ادھیکاریوں نے حماس کے نیتا یحیا سنوار کو ہتیا کی دھمکی دی ہے. فلسطینی اور لبنانی نیتاؤں کے اترکت اویدھ زائونی شاسن نے کئی ایرانی ویگیانکوں کی بھی ہتیائیں کی ہیں. اس کے اترکت بہت سے پترکاروں کو بھی شاسن نے نشانہ بنایا ہے. ابھی حال ہی میں الجزیرہ ٹی وی چینل کی پترکار شیرین ابو آکیلا کی ہتیا اس کا سب سے اسپشٹ ادھارن ہے. رپورٹنگ کے دوران زائونیوں نے ان کی ہتیا کر دی تھی. سن 2000 سے زائونی شاسن نے اب تک کم سے کم 45 پترکاروں کی ہتیا کی ہے. نسندے حالیہ دنوں میں سیاد خدائی کی ہتیا اس اویدھ زائونی شاسن کی انتم کاروائی نہیں ہو سکتی. زائونی شاسن کی ہنسک کاروائیوں کا امریکہ کی اور سے سمرتھن ہوتا رہتا ہے. اسی لیے زائونی شاسن کے ادھیکاریوں نے سیاد خدائی کی ہتیا کی سوچنا امریکیوں کو دی. حالانکہ زائونیوں نے آروپ لگایا ہے کہ شہید سیاد خدائی اویدھ زائونی شاسن کے ورودھ کاروائیوں میں ویست تھے، کنتو واستوکتا کچھ اور ہی ہے. حالیہ دنوں کے دوران وینا وارتا کے سندرب میں یوروپی سنگھ کے ورشٹھ وارتا کار اور قطر کے شاسک کی ایران یاتراؤں سے زائونی شاسن میں گھبراہٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ شاسن اس وارتا کی وفلتا کا اچھک ہی نہیں ہے. دوسری اور اسلامی گڑتنتر ایران نے سمجھوتے تک سہمتی کو اس بات سے جوڑ دیا ہے کہ آئی آر جی سی کے نام کو امریکہ کے دشٹگت آتنکوادی گٹوں کی سوچی سے نکالا جائے. اسی سمبندھ میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کچھ وشلیشکوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اویدھ زائونی شاسن کی اور سے یہ کام ایران کے ساتھ سمجھوتے کو وفل بنانے کے ادیش سے کیا گیا ہے. ایک انیہ بندو یہ بھی ہے کہ سیاد خدائی کی شہادت کا سمبندھ اویدھ زائونی شاسن کے سینی ابھیاس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سینی ابھیاس میں ہتیائیں کرنے کا بھی ابھیاس کرایا گیا.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
دلی کی ایک عدالت نے یاسین ملک کو آجیون کارواس کی سزا سنائی ہے اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے. عدالت کے اس فیصلے پر پرتکریا دیتے ہوئے گپکار الائنس نے کہا ہے کہ اس سے کشمیر کی استھتی میں سدھار نہیں آئے گا اور دلی سرکار اگر کشمیر میں شانتی استھاپت کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی سخت نیتی میں پریورتن کرنا ہوگا.
جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ جسے نئی دہلی کے پرشاسن نے بین کر دیا ہے، اس کے ادھیکش محمد یاسین ملک کو نئی دہلی کی ایک عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا. ٹیرر فنڈنگ کیس میں انہیں آروپیت پہلے ہی 19 مئی کو آروپی گوشت کیا تھا. محمد یاسین ملک نے کورٹ میں کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ہنسا کے ساتھ نہیں ہیں اور اگر یہ بات سدھ ہوئی تو وہ پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ این آئی اے نے ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی، پرنتو کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی. ان کی سزا آنے کے بعد جموں کشمیر میں استھتی انتہائی تناؤ پورن ہوئی اور پرشاسن انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا. سری نگر کے وبھن چھیتروں میں اس निर्णय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन किया गया और 10 के निकट लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। श्रीनगर में आज दूसरे दिवस भी उनके हक में और इस निर्णय के विरोध में बंद रखा गया है। श्रीनगर और श्रीनगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि सड़कों से ट्रैफिक भी गायब है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आईजीपी कश्मीर के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में 3 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं, जिनके नियंत्रण से भारी संख्या में गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया है।
अपने सही साथी मुदरसर साहब को श्रद्धांजलि देने के इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे पुलिस फोर्स के बहुत ही बहादुर होनहार।
इधर एक बार फिर गुपकार एलायंस ने कहा है कि जो निर्णय सामने आया है इससे जम्मू कश्मीर में स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। गुपकार एलायंस के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ टैरिगामी ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को चाहिए कि वो सख्तगीर पॉलिसी तर्क करे। अगर वो कश्मीर में शांति चाहती है तो उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व में गठबंधन की नई सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बुधवार को इमरान खान संसद भंग करके देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस बीच पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। समीक्षा पेश करें साथी मीसम अब्बास।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व में गठबंधन की नई सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बुधवार को इमरान खान संसद भंग करके देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस बीच पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। पेशावर से इस्लामाबाद की ओर मार्च करने वाले इमरान खान और उनके समर्थकों को नियंत्रण में करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए, जिसके तहत 22,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान सरकार के फैसले से इस देश में सुरक्षा संकट उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्ला ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो मार्च में शामिल महिलाओं और बच्चों पर भी रहम नहीं कर रही है और उनके खिलाफ ऐसे आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक्सपायर हो चुके हैं। इमरान खान के समर्थकों के विरोध से निपटने के लिए सरकार ने जिस शैली को अपनाया है उसने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जल्दबाजी से काम लिया है और विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ गैर पेशेवराना रवैया अपनाया है, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं और सड़कों पर संघर्ष शुरू हो सकता है। आशा की जाती है कि पाकिस्तान सरकार विरोध करने के अपने विरोधियों के अधिकार का सम्मान करेगी और उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के आयोजन की अनुमति देगी, ताकि आर्थिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहे इस देश को अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
آج کی بات۔
دوستو کارکرم آج کی بات لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج ہم بھارت کے اتہاس کو بدلنے کی کوشش پر چرچا کریں گے۔ اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ کاشی کی گیان واپی مسجد میں کتھت شیولنگ ملنے کا معاملہ ابھی کورٹ میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ متھرا میں عیدگاہ اور شری کرشن جنم بھومی کا معاملہ بھی کورٹ میں ہی ہے۔ متھرا ضلع کورٹ نے سول کورٹ کو سنوائی کا آدیش دیا ہے اور ساتھ ہی تاج محل کے 22 کمرے کھولنے کی یاچکا کو الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ بات یہیں تاج محل تک ہی نہیں رکی بلکہ قطب مینار کو بھی وشنو استمبھ گھوشت کرنے کی مانگ اٹھی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک یاچکا درج کی گئی ہے جس پر 24 مئی کو سنوائی ہوئی۔ اس کے علاوہ جامع مسجد کے نیچے دیوی دیوتاؤں کی مورتی ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ ہندو مہا سبھا کی دلی کی جامع مسجد میں کھدائی کی مانگ کی گئی۔ تو قطب مینار کا جو معاملہ ہے وہ کافی چرچا میں رہا۔ ایک یاچکا دائر کی گئی۔ وی ایچ پی نے مانگ کی ہے کہ قطب مینار کی کھدائی ہو کیونکہ یہ وشنو استمبھ ہے۔ خبر یہ بھی آئی کہ بھارت کے سانسکرتک منترالے نے بھارتی پراتتو وبھاگ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ یہاں پر کھدائی ہو، لیکن جب اس دعوے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی گئی تو یہ پوری طرح سے جھوٹ اور بے بنیاد بات نکلی۔ اس بارے میں ابھی تک بھارتی پراتتو سرویکشن وبھاگ کے دلی منڈل کو کھدائی اور ادھیان کے سمبندھ میں سانسکرتک منترالے سے اوپچارک نردیش لکھت روپ سے پراپت نہیں ہوا ہے۔ سانسکرتک منترالے کے ادھیکاریوں نے پریسر کا دورہ اوشی کیا تھا۔ ہندوادی سنگھن قطب مینار پریسر استھت قوت الاسلام مسجد سے مورتیاں ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پوجا ارچنا کر سکیں۔ ایک بار تو پردرشنکاری ہاتھوں میں ایسے پوسٹر لیے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ قطب مینار واسطو میں وشنو استمبھ تھا۔ قطب مینار کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ قطب مینار اینٹ سے بنی دنیا کی سب سے اونچی مینار ہے جس کی اونچائی 72.5 میٹر ہے۔ دلی پریٹن وبھاگ کی ویب سائٹ کے انوسار قطب مینار کو 1193 میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا اور 1993 کو اسے یونیسکو نے وشو دھروہر گھوشت کیا۔ ہندو سنگٹھنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 27 مندر توڑ کر یہ مینار بنائی گئی ہے۔ پریسر میں موجود مسجد میں پوجا کی مانگ ہے، اسی کو لے کر ساکت کورٹ میں یاچکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قطب مینار ہو، جامع مسجد ہو یا کوئی دوسری ایتیحاسک عمارت ہو، کیا اب دوبارہ اتہاس لکھے گا بھارت؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطب مینار پر کافی وواد ہوا اور جو دعویٰ کیا گیا، حالانکہ وہ بھی غلط نکلا، مان لیجیے کہ یہ دعویٰ غلط ہے، لیکن جو مانگ ہے یہاں کھدائی ہو، یہاں پہلے وشنو استمبھ تھا، اس مانگ کو اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ وچار سنیے ٹیکاکار اور راجنیتک وشلیشک گیتا بھٹ کے۔
دیکھیے، آپ نے پرشن اٹھایا کہ کس پرکار سے، مطلب کیا اتہاس کو دوبارہ لکھا جائے گا۔ تو ویسا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ایک سوتنتر دیش ہے، اس میں جب کوئی دیش سوتنتر ہوتا ہے تو وہی اپنا بھلی بھانتی سے اپنا اتہاس لکھا۔ اور 1947 میں ہم سوتنتر تو ضرور تھے، لیکن کبھی جو ایک ویچارک اوپنیویشک بات ہے، ہم اس سے بڑے لمبے سمے تک گرست رہے، اور اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ جو اتہاس جس پرکار سے لکھا گیا 1947 کے بعد، وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑے چینت روپ سے لکھا گیا، سلیکٹیولی لکھا گیا، اور اس میں کئی تتھ پرمان شاید چھوٹ گئے۔ وشے یہ ہے کہ جو ستیہ ہے، جو ایویڈینس کے آدھار پر، تتھوں کے آدھار پر جو بات سچ ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور اسے ہمیں سویکارنا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ مہتوپورن بات یہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی قطب مینار کے وشے میں بات کری، تو اس وہاں شاید ایک پتھر بھی لگا ہوا ہے جس پتھر میں یہ لکھا گیا کہ جو یہاں یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، یہ جس کمپلیکس میں، اس کو 27 یہاں جین مندر تھے جنہیں توڑ کے بنایا گیا۔ تو اور باقی جو تتھ جو کہ ابھی پتا چلا ہے نیوز رپورٹ سے کہ جو وہاں نیالے میں جسے جو درخواست لگائی گئی ہے، اس میں باقاعدہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس میں سچائی۔
इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में अलग अलग शासक आते थे और वो अपने हिसाब से चीजों को बनवाते थे। क्या खुदाई से सच्चाई का पता चलता है और क्या खुदाई करने से सच्चाई का पता लगाना चाहिए? तो मैंने भारत की प्रसिद्ध इतिहासकार राणा सफरी से पूछा कि लोगों के सामने किस तरह सच्चाई आनी चाहिए, तो उनका कहना था,
कुतुब मीनार में तो 1199 से 1199 से पूरी हिस्ट्री उसकी पत्थरों पर ही लिखी हुई है, उसके अंदर ही लिखी हुई है, तो वो तो वहां लिखा हुआ 1199। ये तो हमें सबको मालूम है कि 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, तो 1199 तो पत्थर अंदर ही लिखा हुआ है, उसके बाहर उसके जो कुतुब मीनार के सारे बैंड है उनके ऊपर लिखा हुआ है, लोएस्ट बैंड के ऊपर ऐबक का भी जिक्र है, उनका मुइजुद्दीन गौर का भी जिक्र है, सबका जिक्र है। तो कुतुब मीनार का जहां तक सवाल है वो अपनी हिस्ट्री खुद ही बता देगा, क्योंकि उस पर हर जगह लिखा है, हर पत्थर पे लिखा है, हर मंजिल पे उस पर लिखा है, किस मंजिल पे किसने बनाया, आर्किटेक्ट तक का नाम दिया हुआ है अब्दुल फजल माली, तो कि ये जो था वो आर्किटेक्ट था, तो कुतुब मीनार तो खुद ही गवाही दे रहा है।
कुतुब मीनार में पहले मंदिर थे, इसके प्रमाण हैं। वहां पर पैनल्स हैं जो जैन मंदिर के हैं। जब आप परिसर में जाते हैं तो वहां पर ये आपको दिखते भी हैं। वहां पर क्या है, ये मांग अभी क्यों उठी, विचार सुनिए पूर्व एडी डीजी आईएस डॉक्टर बी आर मणि के।
जहां तक प्रश्न ये है कि कुतुब मीनार या उसके साथ की जो मस्जिद है कुबतुल इस्लाम मस्जिद, और वहां ऐसा नहीं है कि ये नई मांग हो वहाँ मंदिरों को एक्सपोज करने की या उसको सरकार को ये बताने की। मैंने 1993 में नॉमिनेशन डोजियर फाइल किया था यूनेस्को में, और 1993 में ये डिक्लेयर हुआ एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और नॉमिनेशन डोजियर में आपको पता है कि हर तरह की चीजें जो भी वहाँ वहाँ की रियलिटी है वो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। जहाँ तक 27 मंदिरों का सवाल है वो कोई नई बात नहीं है कि अभी ये प्रश्न उठा हो। ये जब आप कुतुब परिसर में जाएंगे और कुतुब इस्लाम मस्जिद के गेट पे जब आप जाएंगे तो उसके ऊपर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का इंस्क्रिप्शन है ये उसी इंस्क्रिप्शन मेंशन है कि 27 मंदिरों के मलबे से इस बुतखाने का कंस्ट्रक्शन हुआ है।
जी, जी।
तो ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को स्वीकार करता है, और वहां पर जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और मंदिर के दूसरे अवशेष हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात इतिहासकारों और विद्वानों की बातों को सुनने के बाद ये पता चलता है कि कुतुब मीनार अपना इतिहास खुद ही बताता है। जो लोग वहां जाते हैं उनको नजर आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखा भी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सत्य जो स्पष्ट है अब कौन सा सत्य लाने की बात हो रही है, कौन सा सत्य छिपाया गया है। विचार सुनिए आई सी एच आर के सदस्य सरादिंदु मुखर्जी के।
देखिए मामला बहुत सीधा है, लेकिन भारत में जैसा इतिहास पढ़ाया गया 47 के बाद, इसमें ये सब बातें जो सेंसिटिव मानती है इनको दबा दिया गया था, तो इस पर कोई चर्चा हुआ ही नहीं। और कुतुब मीनार में जो मस्जिद है क्वातुल मुस्लिम, उसका ये नाम भी सर सैयद अहमद ने दिया था, उस समय ये जानकारी नहीं थी, तो दिखाने के लिए कि ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम है।
इतिहासकार इरफान हबीब से जब ये पूछा गया कि ये जानकारी जरूरी है कि वहां पर क्या है, तो उनका कहना था,
ये इसमें इतिहास का विषय ये है ही नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कुछ नहीं है। ये अपना इतिहास खुद कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अपनी वहां पर लिखा हुआ है, सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और कुतुब मीनार के बारे में सब लोग जानते हैं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कुवतुल इस्लाम मॉस्क के होने के बाद कि उसके बारे में एक्सेप्टेड, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद एक्सेप्ट किया है, पूरे कॉम्प्लेक्स को आपने एक डिस्प्यूटेड कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया, आती है उसमें आपकी साफ जाहिर हो जाती है। कुतुब मीनार से इस्लाम मॉस्क का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, जिसके बारे में जिसका इतिहास है वो दोनों इमारतें अपना इतिहास बताती हैं। तो ये सब चीजें आज जो खड़ी की जा रही हैं, ये असल में पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है।
अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से ये मुद्दा नहीं बना है, और आज नहीं तो कल इस पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन ऐसे ही धीरे धीरे खड़ा हुआ था। जब मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी से पूछा कि ये सिलसिला कब रुकेगा, तो उन्होंने कहा,
नहीं देखिए, ये राम मंदिर के साथ भी इन्होंने ये किया है, और मैं बता दूं आपसे कि ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। मान लीजिए अभी 500-700 साल पुरानी बात है कि यहाँ पहले मंदिर था, मस्जिद बना दिया, उसके बाद जब ये जो आज का समय है ये इतिहास बनेगा, तो फिर ये चर्चा चलेगी कि यहाँ तो पहले मस्जिद थी, अब मंदिर बना दिया, अब इसको तो ये गिराना यही चलता रहेगा। देश में अब काम और कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर पे, सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं, बस काम ये है देश के पास कि ये ढूंढिए कहां पहले क्या था, अब उसको तोड़ के दूसरा बनाना, फिर उसको तोड़ के नई चीज बनानी है, बस यही चीजें होंगी। अब जैसे अभी आपने कहा, ये मैंने भी पढ़ा।
कांग्रेस के समर्थक ऋषि मिश्रा कहते हैं कि ना हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान खतरे में है, खतरे में तो लोगों की सियासत और कुर्सी है।
सुप्रीम कोर्ट में दो साल पहले याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके एवज में जवाब मांगा था, आज तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो मेरे कहने का अर्थ है, ये लोग धर्म से कोई लेना देना नहीं है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। जो हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं उनकी राजनीतिक खतरे में है, ये हिंदुस्तान वासियों को समझना होगा, और हिंदुस्तान के लोगों को अपने दिल से पूछना होगा कि ऐतिहासिक करेक्शन के चक्कर में हिंदुस्तान को सांप्रदायिक भंवर में कब तक हम लोग फंसा के रखेंगे। ऐसे सियासतदानों को जवाब देने की जरूरत है, और ये जवाब हम हिंदुस्तान वासी ही दे सकते हैं, ये सांप्रदायिक माहौल बना के। और देखिए, मुझे दुख तब होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस पे कोई देश को संबोधित हर बार करते हैं, मन की बात करते हैं, और हिंदुस्तान माहौल में फंसा हुआ है, और प्रधानमंत्री का एक भी संबोधन इस पे नहीं आता है, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
سفل مہیلائیں۔
دوستو، کارکرم سفل مہیلائیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں۔ سید میسم اور سواتی کا سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तों, हम एक बार फिर कार्यक्रम सफल महिलाएं की कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए ईरान की सफल महिलाओं से आपका परिचय कराते हैं। आज ईरानी समाज में ईरानी महिलाओं ने, चाहे काम का क्षेत्र हो, सामाजिक मामलों की बात हो या फिर खेल का मैदान हो, हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर भी खुद को पहुंचाकर ये साबित कर दिया है कि ईरानी महिलाएं इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए हर क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं। हाल के वर्षों में ईरानी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खेलों के क्षेत्र में ईरानी महिलाओं को प्राप्त हुई सफलताओं से पता चलता है कि वे घर और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह सफल रही हैं। ईरानी महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वे अन्य देशों की तुलना में खेलों में कम योग्य नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी वे बेहतर परिणाम और अधिक क्षमताएं दिखाती हैं।
आज हम ईरान की एक ऐसी सफल महिला से परिचित होने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी बनने वाली पहली ईरानी महिला हैं। वो रेफरी की दुनिया को एक बहुत ही कठिन पेशा मानती हैं, साथ ही रेफरी को एक जज के रूप में पेश करती हैं, जो अगर गलती से भी कोई गलत निर्णय लेता है तो वो अपूर्णीय हो जाता है, क्योंकि टीमों का भाग्य रेफरी के हाथों में होता है और ये इस मुद्दे के महत्व को दर्शाता है। ईरानी रेफरी और वॉलीबॉल खिलाड़ी का मानना है कि महिलाओं ने रेफरी और कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और वे इस्लामी सिद्धांतों और पहनावे का पालन करते हुए विदेशों में अपनी पेशेवर गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं। वॉलीबॉल एक टीम खेल है। ये दुनिया के अधिकांश देशों में छठा सबसे लोकप्रिय और व्यापक खेल है, जिसमें 6 सदस्यों पर आधारित 2 टीमों के खिलाड़ी नेट के दोनों ओर होते हैं और विरोधी टीम के कोर्ट में नियमों के अनुसार गेंद को गिराने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक टीम को मैच जीतने के लिए 5 में से 5 सेटों में से कम 3 सेट जीतना जरूरी है।
वॉलीबॉल मूल रूप से एक इंडोर खेल था जिसे आमतौर से कवर जगहों पर खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे खुले स्थानों में खेलना आरंभ किया और फिर गर्मी के मौसम में पार्कों, समुद्री तटों पर खेले जाने वाले लोकप्रिय खेल में परिवर्तित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली ईरानी महिला वॉलीबॉल रेफरी के रूप में मलिहा नूरी अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वर्ष 2017 में बाकू में आयोजित हुए इस्लामिक देशों के ओलंपिक में फाइनल मैच में प्रथम रेफरी के तौर पर मेरा चयन हुआ था, जिसमें मैंने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मैच की सफलतापूर्वक जिम्मेदारी निभाई थी। पुरुषों की प्रतियोगिता में निर्णय लेना महिलाओं की प्रतियोगिता से बहुत अलग है। अन्य बातों के अलावा पुरुषों की प्रतियोगिताओं में खेल की गति बहुत अधिक होती है, जो किसी रेफरी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती के तौर पर माना जाता है। हालांकि एक रेफरी इन चुनौतियों को पार करके एक सफल और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनने में कामयाब होता है।
मलिहा नूरी आगे कहती हैं कि इस समय वॉलीबॉल के क्षेत्र में 9 ईरानी महिला रेफरी हैं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के नजरिए के अनुसार वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रेफरी के लिए लिंग की कोई सीमितता नहीं है। वहीं हमारे देश में भी पहली महिला रेफरी के तौर पर आने के बाद और वो प्रदर्शन जो मैंने पेश किया है उसको देखने के बाद सीमितता कम हो गई है। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ईरानी महिला रेफरी की दिन प्रतिदिन उपस्थिति को ज्यादा से ज्यादा देख पा रहे हैं। मलिहा नूरी कहती हैं कि मैं ये बताना जरूरी समझती हूं कि मुझे ईरान में पुरुषों की राष्ट्रीय टीम की तैयारी के मैचों में की भूमिका निभाने का अनुभव पहले ही मिल चुका है।
मलिहा नूरी छोटी उम्र से ही ईरान के प्रसिद्ध शहर इस्फहान में वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में सक्रिय रही हैं। वह जब 23 साल की थी तभी वॉलीबॉल को अलविदा कह दिया था और उन्होंने तय किया कि रेफरी के तौर पर खुद के कैरियर को आगे बढ़ाएगी। मलिहा नूरी को रेफरी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय 25 साल का समय बीत रहा है। उन्होंने इतने लंबे समय को इस काम में कैसे गुजारा वह इस बारे में बताती है कि जीवन के उतार चढ़ाव कभी कभी आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप वास्तव में पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करते रहें। कहते हैं ना कि इंसान की कोशिशें बेकार नहीं जाती। ये जरूरी है कि कभी कभी देर हो जाती है लेकिन कोशिश का फल मिलता जरूर है। मलिहा नूरी कहती हैं कि आरंभ में मैंने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं पेश आई जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई और उसको छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मैंने ग्लोबल बिजनेस ब्रांच ट्रेडिंग के विषय को पढ़ाई के लिए चुना, लेकिन इन सब के बीच में मैंने अपने स्कूल टाइम से वॉलीबॉल खेला करती थी और मैंने कई प्रांतीय और राष्ट्रीय और लीग स्तर की प्रतियोगिता में कई पदक अपने नाम किए थे।
इस बीच राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की ओर से ये कहा गया कि उन्हें रेफरी और कोचिंग के बीच किसी एक को चुनना होगा। मैंने फैसला किया कि मैं खेल और कोचिंग दोनों से खुद को अलग कर लूंगी और रेफरी बनूंगी। मलिहा बताती हैं कि मैंने जो तय किया था वही किया, नेशनल क्लास प्रमोशन कोर्स में प्रवेश किया और रेफरी के तौर पर अपने भविष्य को निर्धारित कर लिया। वो कहती हैं कि मुझे न्याय करने में अधिक दिलचस्पी थी और मुझे लगा कि मेरे पास इस क्षेत्र में अधिक क्षमता है। मेरा नाम वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों की सूची में आ गया और उसके बाद से आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। नतीजा आप लोगों के सामने है। मलिहा नूरी उन सैकड़ों सफल ईरानी महिलाओं में से एक हैं जो अपनी गंभीरता और दृढ़ता के साथ समाज में उपस्थित होने में सक्षम हैं। मलिहा नूरी आज जिस स्थान पर हैं और जो सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं उसके बाद वो कैसा महसूस करती हैं उसके बारे में बात करते हुए कहती हैं कि जब मुझे एशिया और यूरोप के सभी पुरुष और महिला रेफरियों की उपस्थिति में बैंकॉक में खेले गए वॉलीबॉल सेमीफाइनल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए रेफरी के रूप में चुना गया तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर उस दिन उस समय जो जोश और जज्बा था मैं उस पल को कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नूरी कहती हैं कि बहुत ही कम समय में मेरा सपना पूरा हुआ। इसीलिए मैं कहती हूँ इंसान को बड़े सपने देखने चाहिए तभी वो अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है।
मलिहा नूरी कहती हैं कि जिस क्षण मुझे पता चला कि मुझे सेमीफाइनल के पहले राउंड के लिए रेफरी के रूप में चुना गया है और मेरा दूसरा रेफरी एक इतालवी पुरुष है तो मेरी खुशी उस समय दुगनी हो गई कि मैं ईरानी झंडे को सबसे ऊपर ले जा सकती हूं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मेरे द्वारा की गई रेफरी की भूमिका को काफी सराहा गया। मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी रेफरी का खिताब मिला, जो मेरे लिए बहुत अच्छी स्मृति थी। मलिहा नूरी कहती हैं कि इस्लामी क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में ईरानी परिवारों ने विभिन्न खेल के क्षेत्र में भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में खेल के महत्व को महसूस करते हुए वे अपने बच्चों को वॉलीबॉल में प्रवेश दिलाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं या उन्हें ट्रेनिंग कैंपों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। वास्तव में इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद के वर्षों में कई लोगों ने अपने बेकार के शौकों से मुंह मोड़ लिया और खेलों की ओर रुख किया, जिसने ईरान में सार्वजनिक खेलों की ओर आम लोगों के ध्यान को खींचना शुरू किया। साथ ही सार्वजनिक खेलों को मजबूती मिली और आज खेल की दुनिया में इस्लामी गणतंत्र ईरान की अपनी एक मजबूत पहचान है।
मलिहा नूरी कहती हैं कि आज देश में खेल की ओर युवा आकर्षित हो रहे हैं, उनकी दिलचस्पी खेलों में बढ़ रही है, जिसके परिणाम को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो कहती हैं कि अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि हम तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरह से विश्व मानकों से दूर नहीं हैं। कुछ मामलों में ईरानी रेफरी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन सभी बातों को मैं बिना बढ़ाई चढ़ाई कह रही हूं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि पुरुषों के पास हमसे ज्यादा अनुभव है और उनके पास अधिक मौके भी हैं। यही कारण है कि वो ज्यादा मैचों में रेफरी की भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि किसी ईरानी महिला को जिसने अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों में अपनी जगह बनाई है, उसमें काफी संभावनाएं पाई जा सकती हैं और वे अपने और अपने देश को गौरवान्वित कर सकती हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति का कहना है कि देश के विकास को प्रतिबंधों के हटाए जाने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसराइल ने कर्नल सैयद खुदाई की हत्या में लिप्त होने की बात स्वीकार कर ली है। सैयद हसन नसरुल्ला का कहना है कि इसराइल के विरुद्ध 2000 की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर दिया है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है forstoday.com/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें।